नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्य समाचार। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले पर गैर राजनयिक प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पक्षों से संघर्ष समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयास कमजोर करने वाली कार्रवाइयों से बचने का आग्रह किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ईरान में मुद्रा की रिकॉर्ड गिरावट के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन। सऊदी अरब ने हथियारों की खेप पहुंचने के बाद यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर बमबारी की, जिससे पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव बढ़ा। और तिरुवनंतपुरम में पांचवें और अंतिम T20 महिला क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 176 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर यूक्रेन हमले की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि अभी जारी राजनयिक प्रयास शत्रुता को समाप्त करने और स्थायी शांति का सबसे कारगर मार्ग है। इस बीच यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर कथित हमले के दावों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने रूस पर घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश करने तथा गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया कि यूक्रेन ने नोवगोरोद क्षेत्र में कल रात देर रात श्री पुतिन के आधिकारिक आवास पर ड्रोन से हमला किया। अब तक किसी तरह की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका जाएंगे। डॉ जयशंकर भारत सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बीच बांग्लादेश ने उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
खालिदा जिया की नमाज ए जनाजा बुधवार दोपहर 2 बजे ढाका में जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा और माणिक मिया एवेन्यू पर होगी। उन्हें उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पास दफनाया जाएगा। अंतरिम सरकार ने बताया है कि अंतिम संस्कार तक पूरी प्रक्रिया पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगी। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच अवामी लीग की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
केंद्र सरकार ने भारत कनाडा सहयोगी औद्योगिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा स्थित एक निजी समुद्री कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य 20 यात्री विद्युत नौकाओं का विकास करना है। इनसे पर्यावरण अनुकूल जलमार्ग को मजबूती मिलेगी, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और टिकाऊ पर्यटन विकास को बल मिलेगा। अमेरिका ने ताइवान के आसपास चीन का सैन्य अभ्यास देखते हुए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 2 विमान वाहक पोत और 1 एम्फीबियस जहाज तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के नेवल इंस्टीट्यूट फ्लीट एंड मरीन ट्रैकर के अनुसार निमित्ज श्रेणी के विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को नियमित संचालन के लिए दक्षिण चीन सागर लाया गया। चीन ने सैन्य अभ्यास के दूसरे दिन मिसाइलें छोड़ी और ताइवान के आसपास लड़ाकू विमान तथा युद्धपोत तैनात किए। इस बीच ताइपेई ने इन अभ्यासों की निंदा करते हुए इन्हें उकसावे की कार्रवाई बताया। ईरान में अमरीकी डॉलर के मुकाबले मुद्रा में रिकॉर्ड गिरावट और केंद्रीय बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फर्जिंग के इस्तीफे के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसे पिछले 3 वर्षों में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है। व्यापारियों और दुकानदारों ने तेहरान के साथ साथ मुख्य ग्रैंड बाजार के पास शुश इलाके में रैलियां की। मध्य ईरान के इस्फहान, दक्षिण के शराज और उत्तर पूर्व के मशहद सहित अन्य प्रमुख शहरों में भी इसी तरह की रैलियों की खबर है। तेहरान के कुछ इलाकों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे पहले रविवार को विरोध प्रदर्शन तेहरान के डाउनटाउन स्थित 2 प्रमुख मोबाइल बाजारों तक ही सीमित थे, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब ने आज तड़के यमन के बंदरगाह शहर मुकल्ला पर बमबारी की। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी ने सेना के बयान के हवाले से बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाह शहर फुजैराह से जहाजों के यमन पहुंचने के बाद हवाई हमले किए गए। सेना ने कहा कि जहाजों से उतारे गए हथियारों से सुरक्षा और स्थिरता को खतरा था। इस हमले ने सऊदी अरब और यमन के बीच तनाव और बढ़ा दिया है। इस बीच यमन के हौसी विरोधी बलों ने हवाई हमलों के बाद देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। इसराइल की सेना ने गजा पट्टी में आज फिर हमले किए। गजा के विभिन्न इलाकों में हवाई और जमीनी हमले किए गए। स्थानीय मीडिया के अनुसार हवाई हमलों में रफाह के उत्तरी इलाके, खान यूनिस के पूर्वी इलाके, मध्य गजा के अल मघाजी कैंप और उत्तर के बेत लाहिया इलाके को निशाना बनाया गया। एक रिपोर्ट।
गजा ने कहा है कि ये हमले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 10 अक्टूबर के संधि विराम समझौते का उल्लंघन है। कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी और गजा के लिए शांति विराम योजना के अगले चरण पर विचार विमर्श किया था। बैठक के बाद श्री ट्रंप ने कहा कि शांति योजना के दूसरे चरण से पहले हमास को निरस्त्रीकरण के लिए समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसराइल ने समझौते का पूरी तरह अनुपालन किया है। बैठक के दौरान श्री नेतन्याहू ने शांति के लिए इजरायली पुरस्कार सृजित किए जाने की घोषणा की थी और इसके पहले प्राप्तकर्ता के रूप में ट्रंप का नाम मनोनीत किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
रूस की रक्षा मंत्रालय ने परमाणु सक्षम और क्षणिक मिसाइल प्रणाली को सक्रिय सेवा में लिए जाने की घोषणा की है। विस्तृत जानकारी दिए बिना रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बेलारूस में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल और क्षणिक ध्वनि से 10 गुना गति से 500 से 5,500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसी महीने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य अधिकारियों की बैठक में ओरिशनिक को जल्दी ही सक्रिय सेवा में लाने की बात कही थी। ये घोषणा रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के महत्वपूर्ण समय में आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को फ्लोरिडा में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन और रूस शांति समझौते के काफी निकट हैं। रूस ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक निवास पर यूक्रेन के विफल ड्रोन हमले का जवाब कूटनीति से नहीं अन्य उपायों से दिया जाएगा। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी कि जवाबी हमले के लिए लक्ष्य की पहचान कर ली गई है और सेना द्वारा कार्रवाई करने का समय भी तय हो गया है। दुबई अपने सबसे भव्य नववर्ष समारोह की तैयारी कर रहा है। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण 31वां दुबई शॉपिंग फेस्टिवल है जो 5 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक चलेगा। ये उत्सव अमीरात को भारी छूट, लाइव प्रदर्शन, दैनिक आतिशबाजी और ड्रोन शो के साथ शीतकालीन खरीदारी और मनोरंजन केंद्र के रूप में स्थापित करता है। तिरुवनंतपुरम में पांचवें और अंतिम T20 महिला क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 176 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 147 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 68 रन बनाए। श्रृंखला में भारत 4-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले पर गैर राजनयिक प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पक्षों से संघर्ष समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयास कमजोर करने वाली कार्रवाइयों से बचने का आग्रह किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ईरान में मुद्रा की रिकॉर्ड गिरावट के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन। सऊदी अरब ने हथियारों की खेप पहुंचने के बाद यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर बमबारी की जिससे पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव बढ़ा। और तिरुवनंतपुरम में पांचवें और अंतिम T20 महिला क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 176 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।